ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
सत्रहवें अध्याय के 23वें श्लोक में कहता हूं, सचिदानंद गणब्रह्म की साधना का ओम तत् सतीति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस सचिदानंद गणब्रह्म के पास जाने का, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का, उसको पाने का तीन मंत्र की साधना है। ओम तत् सर्वपुरुष का, तत् ये सांकेत है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का मंत्र है। इन तीनों की मजदूरी करने से, साधना करने से, कमाई करने से, भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन यदि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भजन भी कर, मुझे प्राप्त होगा, नो डाउट। अब अपने प्राप्ति बता रहा है कि मेरी भी प्राप्ति होगी इस ओम मंत्र से, ओनली वन मंत्र, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, और कहता है युद्ध भी करना पड़ेगा, यहां शांति नाम की चीज नहीं, परम शांति चाहिए तो उसकी शरण में जा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 तीन मंत्रों में कंटिन्यूस बताया है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करता है उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार उस मंत्र से, तो भक्ति की शक्ति से यानी उस मंत्र के जाप की कमाई से उस परमेश्वर के पास चला जाएगा। अपुण आत्मा, हमने भक्ति करनी है तो या क्यों ना करें, वो डले क्यों डोवा जो असंग जन्म हो गया, हमने डोत्या ने। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इन अनुवादकर्ताओं ने यहां भी अनर्थ कर रखे हैं, व्रज का अर्थ जाना होता है, इन्होंने आना लिखा है, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और तब इसका गीता जी का अनुवाद किया, जबकि श्री कृष्ण जी तो विष्णु अवतार थे, ये सतोगुण भगवान हैं और ब्रह्म के पुत्र हैं और मूल परमात्मा की भक्ति से यानी उससे ही हमें लाभ होगा। उसका अर्थ ये बनता है कि सर्वधर्मान परितज माम, मेरे सत्र की, ब्रह्म सत्र की जो ओम की पूजा उस तीन मंत्र के जाप में, ओम तत् सत में, वो मुझे छोड़ दे, और यज्ञ हवन जो भी हैं ये ब्रह्म सत्र के हैं, ये सब धार्मिक पूजाएं मुझ में त्याग कर एकम शरणम व्रज, एकम मन जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय प्रभु सचिदानंद घन ब्रह्म उसकी शरण में जा, मेरे सत्र का मुझे दे जा। हम पहले ओम नाम के कमाई यज्ञ करके हम कहां जाते थे, ब्रह्म लोक में चले जाते थे, वहां अपनी पूंजी खत्म करके उस रेस्टोरेंट में वापस स्वर्गदेव बन जाते थे। अब हमें ज्ञान हो गया हम इस पूंजी का नष्ट नहीं करेंगे, हम सदुपयोग करेंगे, इसका कर्जा उतारेंगे, चले जाएंगे। तो इस काल को, इस सब ओम नाम का जाप इसको दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर कुत्ते गधे नहीं बनाओगा, हमें बंद में नहीं रखेगा। तब ये कहता है, एम तवा सर्व पापे व्यामोक्षामि मा सुच, मेरा कर्जा तार दे, फिर मैं तेने क्यों दुखी करूंगा, मैं नहीं रुकूंगा यहां पर, और फिर जा तू अपने घर ने। और ये नो कहे मेरी शरण में आ जा, सभी धर्मों के कर्मों को मुझ में छोड़, मेरी शरण में आ जा। उसकी शरण में तो पहले था ही वो। दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में अर्जुन कहता है कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शरण हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद करगी, मेरे हित में जो हो तुम वो बताओ। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये अज्ञानी कहें कि श्री कृष्ण अपने ही शरण माने को कहता, प्रथम तो श्री कृष्ण बोल ले नीरा, उसमें बोल ले काल। अगर श्री कृष्ण मानकर चलते हो तो पहले कह रहा अर्जुन के मैं तो आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, और बता शरण में कीजा उसके अंदर बढ़े। तो ये बिना ज्ञान की बातें थी, हमें मूर्ख बना रहे थे ये नकली गुरु, संस्कृत की भाषा जानकर। यह आत्मिक ज्ञान नहीं था इनके पास। तो अंधे की बां गई, अंधे ने मारे कौन बतासी। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुराणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वृण जमराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक भीष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। एक शब्द में सारा जाड़ा दे दिया उस परमात्मा परिचित पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर क्यों कहा इसको, सतलोक को, उसको डिफाइन किया है परमात्मा की वाणी में। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, ही सुख का सागर सोई। उस सतलोक में कहते हैं आपके अंदर असंखों लहर मेहर की उपजेंगी, कहर नहीं जा कोई। जैसे आप कभी कभी एकांत में बैठे हो दास के साथ, तो बहुत बार बनी है ऐसी बातें, ऐसी बहुत बार हिलोर उठती हैं। जब वो एक तरंग आती है मेहर की, उसमें कोई भी बुरा दिखाई नहीं देता। दुश्मन भी जो हमें दुख दे रहा है, उसके प्रति भी बिल्कुल दुर्भावना नहीं रहती, कोशिश करने से भी दुर्भावना नहीं आती। उसके अवगुणों को भी गिनते हैं तो भी दुर्भावना उत्पन्न हृदय में नहीं आती, और वो होती है कुछ समय की, फिर उसके जाने के बाद जो का त्यों कहर टूट जाता है। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा कैसे कर दिया, वो घाटा हो गया, वहां ऐसे नुकसान हो गया, फलाना ऐसे करना, यानी वो कहर की लहर फिर शुरू होगी। तो परमात्मा कहते हैं वहां सतलोक के अंदर ये शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, कोई कष्ट नहीं, ना बुढ़ापा ना मृत्यु, सदा युवा शरीर रहेगा। और वहां जो शरीर बनेगा शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो इस नाड़ियों के जोड़ से नहीं बनेगा वहां शरीर हमारा, श्वास से नहीं चलेगा, वो एक तत्व से बनता है। जैसे यहां पांच तत्वों से शरीर बना है, इसमें कहीं पांच तत्व दिखाई देते हैं आपको, और कितना सुंदर बना रखा, और बिल्कुल पांच तत्वों का मेल है। इसका योग कैसे बनाया, जैसे अन्न अनुज्ञा, अन्न खाया, अन्न से फिर शक्ति बनी, शक्ति से फिर शरीर बना, उसका ऐसा प्रारूप बदलकर ऐसा बना दिया। ऐसे वहां एक तत्व से, नूर तत्व से हम सभी का शरीर बनेगा, और वो शरीर ऐसा होगा जैसे 16 सूर्य जितना तेज होगा आपके शरीर का, प्रत्येक आत्मा का। लेकिन परमात्मा का भी शरीर है, अपने ही जैसा है, उसका बहुत तेजोमय शरीर है सतलोक के अंदर। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी है भगवान के एक रोमकूप के नूर के सामने। और हम सब आत्माओं का 16 सूर्य जितना सुंदर, यानी इतना तेजोमय और बहुत ही खूबसूरत शरीर होगा। अब क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। पुण्यात्माओं, अभी तो आपको ज्ञान अभी इतना गहनता से ग्रहण नहीं किया आपने, अंदर समाया नहीं आपके अंदर। जब ये सच्चाई हृदय मान लेगा ना, आपका आत्मा मान लेगी, 100 की 100 सच्ची है जो परमात्मा ने बताई, और अब इसको सत को सत मानने में देर नहीं लगेगी। अपने थोड़े से फार्मूले याद रखो, सभी वेद कहते हैं परमात्मा ऊपर रहता है, मनु सदृश शरीर में है, और वहां से वो गति करके आता है, और यहां के क्या लीला करता है, जब वो बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, तालाब के ऊपर, जल के ऊपर, कमल के फूल पर विराजमान होता है, यानी जल के ऊपर विराजमान होने से उसको नारायण कहते हैं। अब पता लग जाएगा वो है कौन। और जो छोटे बालक जब होता है, उसको कोई पुण्यात्मा संस्कारवश निसंतान दंपति उठा के ले जाती है, प्रत्येक युग में ऐसा होता है, और फिर परमात्मा वहां उनके परिवर्ष की लीला कुंवारी गायों से होती है, कुंवारी गाय से। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, कबीर जी, पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, उन्होंने वो लीलाएं की थी जो वेदों में लिख रखी है। वेद तो केवल परमात्मा की पहचान बताते हैं, वो ऐसा है, ऐसा करता है। वो लीला किसने की है आज तक, श्री कृष्ण का इतिहास देख लो, वह भी आए पृथ्वी पर, जन्म हुआ मां से, लेकिन कबीर परमेश्वर का मां से जन्म नहीं हुआ। ये तगड़मबाजी बढ़ा करते नकली आदमी कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, वो उसने शर्म के मारे गेरगी, उसका विधवा का बच्चा हो गया, उसके विधवा का मां का बाप का उसका कितने नाम गांव तो बता दो, ऐसा सट्टे मारे, मूर्ख बना रखा था हमारे को, सारी झूठ बोल रखी थी, भगवान को कौड़ी सिद्ध कर दिया और कौड़ियों को लाल बता रखा था, और वो कुंवारी गायों से दूध पीता है, वो कुंवारी गायें दूध देती है। तो ये लीला परमेश्वर कबीर जी ने की थी, और आज तक किसी ने करी हो बता दो, और किसी का नो प्रमाण, ऊपर तो चलकाया और सह शरीर चला गया वापस, एक दिखा दो जिनको हम भगवान मानते थे, राम श्री कृष्ण का दिखा दो। तो कहने का भाव पुण्यात्मा, हम भगवान को पहचान नहीं सके, क्योंकि जिनको हम गुरु मानने थे वंदे थे, ज्ञान नेत्रहीन थे वो, कहते मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतियाबिंदरे। किसी को मोतियाबिंद हो जाता है, उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, और उसने दिखता कते नहीं, नपट अंधा होता है, ब्लाइंड मैन होता है वो। तो इसी प्रकार ये ज्ञान नेत्रहीन थे और दिखे थे चतुर, क्योंकि संस्कृत जाने थे, एक भाषा के जान लेने से उसमें लिखे हुए गूढ़ रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अब हम हिंदी जानते हैं, मान ले किसी फॉरेनर ने आके हिंदी सीख ली, और इसको तुलसीदास करित रामायण को ले गया वहां पर अपने देश में, और उसने अक्षर पैर का पता नहीं, राम कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी, कुंभकर्ण कौन था, और भाई विभीषण कौन था, तो उन्हें पता नहीं के अटके बट मारेगा। एक हिंदी के जान लेने से उस कथा को वो कैसे सुलझा सकता है जो चौपाइयों में लिखी है। ऐसे वेद और ग्रंथ और पुराण और गीता जी, ये परमात्मा की महिमा से परिपूर्ण है। संस्कृत के जान लेने से कोई नहीं समझ सकता, जब तक ये मौखिक कथा रामायण वाली की तरह सृष्टि रचना का जिसको ज्ञान नहीं होगा, और वो सृष्टि रचना खुद रचने वाला ही बता सकता है ठीक ठीक। अभी तक तगड़मबाजी बढ़ा रहे थे, अब प्रसंग जो आ रहा है वहीं पर आते हैं। क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। अब परमात्मा को पहचानना एक इतना आसान हो गया, एक तो ये पहचानना है कि सारे वेद बताएं, चारों वेदों को तो हम कति फाइनल मान रहे हैं, अब भी कोई उसको नहीं कहे, मैं नहीं मानता वेदों को, वो तो फिर भक्ति योग प्राणी है नहीं, या किसी ने भ्रमित कर रखा उल्लू ने मूर्ख ने। जो ये कहते हैं हम वेदों को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, हम अपने गुरुओं के ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो सदग्रंथों को न मानना ही उनकी महामूर्खता है। और कबीर जी की वाणी भी सदग्रंथ है, वो सब ग्रंथों का ग्रंथ है, यानी उसमें ऑल इन वन है नो समझ लो। और दूसरा वेद बताते हैं, फिर वो लीला किसने की, फिर आंखों देखा संत बताते हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, उनको भगवान मिले थे, जिनको वो आकर मिलते हैं अच्छी आत्मा दृढ़ भक्तों को। उनमें से एक आदरणीय नानक साहिब जी हैं, वो कहते हैं फाई सूरत मनुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खराब सियाणा भोता भार। ये धानक रूप रहा करतार, परमात्मा सतलोक से आए थे, परमात्मा उसमें समकालीन थे, इनके यहां भी थे, सतलोक में भी रहते हैं, वो हर जगह जहां चाहे प्रकट हो सकते हैं, प्रभु में इतनी शक्ति है। तो नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, स्नान करने गए जब, उससे पहले भी वार्ता की थी कबीर रूप में आके, लेकिन नानक साहब जी मान्य नहीं थे, लेकिन अंदर से टूट गए थे सच्चाई को सुनकर। प्रार्थना यही करते थे, प्रभु फेर मिलो एक बार के। आदरणीय नानक साहब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ था, ये कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर इनका जन्म था, और इनके पिताजी जो पटवारी थे उस समय, और ये अच्छी आत्मा थी। फिर ये इन्होंने एक अपनी बहन के नगर में, जहां उनकी बहन ब्याह रखी थी, सुल्तानपुर शहर में अपने बेनोई की सिफारिश से वहां के सुल्तानपुर के नवाब के यहां नौकरी करते थे मोदी खाने में। तो स्नान करने के लिए बेई नदी पर जाते थे, पहले परमात्मा कबीर जी उनसे मिले, चर्चा की और बताया कि मैं कबीर हूं और छोटी जाति का धारक हूं, काशी में रहता हूं और मैं ज्ञान की तलाश में घूम रहा हूं। तो नानक साहिब जी ने बताया कि श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, ये परम शक्ति हैं, गीता में इसी का वर्णन किया गया है। यानी जैसा भी उन्होंने, श्री नानक देव जी ने ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे, जैसा भी ऐसे इन गुरुओं ने हमें ज्ञान दे रखा था, उसी आधार से नानक जी ने बहुत अपना सुनाया कि ऐसे है श्री कृष्ण, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, इन्हीं की भक्ति से मोक्ष होगा। तो परमात्मा ने उनसे 7 श्लोकों के उत्तर पूछे थे नानक साहब जी से। एक तो ये पूछा था कि यदि श्री कृष्ण जी सर्वशक्तिमान हैं, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहता मेरी तो जन्म मृत्यु होते, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये किसको किसकी शरण में जाने को कह रहे हैं, पूछना आपके ब्रजलाल पांडे से। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम कह रहे हैं। उत्तम पुरुष है तू अन्य वो कौन है, 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि तत्व ज्ञान तो कोई और है, ये गीता वाला ज्ञान तत्व ज्ञान है, इसको संत बतावेंगे। इन बातों को कहकर के नानक साहिब जी नाराज हो गए ये सुनकर, लेकिन रात्रि के समय करवट बदलते रहे कि सचमुच बात तो सारी साची है। नानक साहब भी पढ़े हुए थे, हिंदी भी पढ़े थे, फारसी भी पढ़े थे, उन्होंने गीता जी को देखा, एकाध ब्राह्मण से बात करी, किसी के पास उत्तर नहीं था। तो ऊपर से तो वो कबीर जी को धमका कर आ गए थे कि तू गलत बोलता है तो मुसलमान दिखाई देता है, तो परमात्मा चले गए थे उस टाइम। कुछ दिनों के बाद उसको ऐसी कसक लगी नानक जी को, अंदर से रोने लगे, तड़पते थे, एक बार फिर मिले महाराज, फिर बात करेंगे। वो फिर दोबारा फिर मिल गए 15-20 दिन के बाद। उस समय केवल नानक जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। कुछ देर बात हुई थी, फिर नानक जी ने, क्योंकि वो मन नहीं टकता जल्दी सी, उन्होंने कहा था कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे ढूंढ देना। नानक साहिब जी ने दरिया में छलांग लगा दी, परमात्मा ने उनको गुप्त किया वहां से, और पीछे जाकर 3 किलोमीटर पीछे को, जहां से अपस्ट्रीम में ले गए, जिधर से पानी बहता रहा था, और वहां उनका शरीर एकांत स्थान पर रख दिया, आत्मा को लेकर सचखंड गए। सचखंड में देखा कबीर परमेश्वर जो जिंदा महात्मा के रूप में वहां उनको मिले थे, उसी रूप में ऊपर सतलोक में पहुंचे और परमात्मा सतपुरुष बैठे थे तकत के ऊपर ऑल ओवर कंट्रोलर की चेयर पे उस सिंहासन पर। तो नानक साहब ने सोचा कि परमात्मा यू है सतपुरुष, सतपुरुख ये है सामने बैठे सिंहासन पर, और कबीर जी एक सिंपल बेस में जिंदा महात्मा के रूप में साधु के रूप में, और ये यहां का नौकर होगा कोई कबीर, तो नानक जी ने सोचा। अब उस समय तक परमात्मा ने ये डिस्क्लोज नहीं किया, जब पहले रूप में मिले थे जब तो कबीर रूप में मिले थे, दोबारा जब आए जिंदा महात्मा का रूप बना कर आगे, शरीर दूसरा था, चेहरा नहीं मिल रहा था बनारस वाले से, फिर उनको लेकर गए ऊपर, ऊपर जाकर क्या देखा, कबीर जी जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे और दूसरा उन्हीं का रूप बैठा था, तेजो में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप की शोभा, उसके ऊपर चौर कर्ण लगे कबीर साहब। नानक जी ने पक्का हो गया कि सतपुरुख अकाल पुरुख तो यू है, ये बैठा तकत पर जेड़ा, ये नीचे से ये बाबा जी आया महात्मा, ये इनका नौकर है। इतने में क्या हुआ, वो तेजो में शरीर वहां से उठा अपने सिंहासन से, और कबीर जी नीचे से जिंदा महात्मा वाले रूप में गए थे वो विराजमान हो गए। उस समय उस परमात्मा का वो रूप जो बना जब सिंहासन पर विराजमान हुए, जो अकाल मूर्त तेजो में शरीर वाला था वो चवर करने लग गया, उस कबीर परमेश्वर जिंदा वाले बाबा वाले महात्मा वाले स्वरूप के ऊपर चवर करे नौकर की तरह। उस समय परमात्मा का जो स्वरूप बन गया वो कबीर जी वाला बन गया, जो दानक रूप में जो लाहे रूप में बनारस में थे और जो पहले नानक जी को मिले थे, और वो तेजो में शरीर दो था कबीर जी के जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया, अलग कोई नहीं रहा, ओनली वन, ओनली वन गॉड है, एक परमात्मा कबीर जी विद्यमान थे बनारस वाले धानक ऑल ओवर कंट्रोलर की तकत पर सिंहासन पर। अब नानक साहब से कहा कि जाए, तीसरा दिन हो गया, इस तरह परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए, उनकी रचना बताई कैसे इनका जन्म हुआ। अब परमेश्वर ने कहा कि अब जाओ प्यारी आत्मा, अब उन भोली आत्माओं को समझाओ जो काल के जाल में फंसी पड़ी है। अब वहां जाकर के प्रत्येक आत्मा ये चाहती है मैं वापस ना जाऊं उस गंदे लोक में, नानक जी ने प्रार्थना की, लेकिन परमात्मा ने कहा अब जाओ, आपकी आवश्यकता है वहां पर, मेरे गवाह बनोगे, लेकिन ऐसे नहीं मैं रख सकता, आपको ये भक्ति करनी पड़ेगी सतनाम की, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता, ये दो अक्षर का नाम है, यानी पूरा ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। अब उधर से नानक जी को मर्त जान करके डूब गया दरिया में, उसकी खोज शुरू होगी, नवाब ने भी खोज शुरू कर दी, गोताखोर लगा दिए, जाल डाल रहे हैं इधर जिधर डाउन स्ट्रीम में, और नानक जी का शरीर रखा 3-4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जंगल में। तीसरे दिन वो आत्मा वापस भेज दी भगवान ने उस शरीर में, नानक जी वहां से उठकर सुबह सुबह फिर उसी दरिया पर आकर खड़े हो गए जहां लोग स्नान करने जाते थे, और वो भी जाया करते थे, कहां तो हाहाकार मची हुई थी, और मर गया डूब गया मर गया डूब गया, उधर क्या देखा वो तो सामने खड़ा है, सारा शहर उमड़ गया देखने के लिए। तब नवाब की नौकरी त्याग दी और कहा कि अब सच्चे सरकार की नौकरी करेंगे। तो फिर वो इस खोज में परमात्मा ने कहा था कि मैं बनारस में हूं काशी में, और वहां आ जाना सतनाम दूंगा, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं, और वो काल का लोक, तो सतनाम प्राप्ति के लिए। और नानक जी ने वाहे गुरु कहा था कि वाहे गुरु, जब अकेले रह गए ना तकत पे कबीर जी सतलोक में, और दूसरा रहा नहीं भगवान, जब ने कहा था वाहे गुरु सही रास्ता दिखा दिया, और स्वयं भगवान वाहे गुरु वो नीचे आ गया, नीचे आकर उसके मन मरट लगी कि वो ही गुरु मिला जो सतनाम दे, और ये 7 श्लोक जो परमात्मा ने प्रसन्न किए थे नानक जी ने, ये 7 श्लोक उसने नोट कर लिए, जो भी कोई ब्राह्मण विद्वान मंडलेश्वर उनको मिला उनसे 7 श्लोक करते थे, बताइए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में यु गीता ज्ञानदाता किसकी शरण में जाने को कहता है, फिर वो करते फरड़ फरड़ अपनी शरण में कहता है, अपने बारे में कहता है, छड़ दे गल, फिर वहां से चल पड़ते थे। वो न्यू पहचान करते जा रहे थे कि कौन से है वो भगवान। यू ज्ञान जब स्वर में बोलेगा वो सही गुरु वो ही पाएंगे असली तय। उनकी खोज करनी थी कहीं महात्माओं में यही छुपे ना हो। पहली उदासी यानी कति मायूस होकर यात्रा की थी उसको प्रथम उदासी कहते हैं। तो बनारस में पहुंचे। कबीर जी ने यह भी बता दिया था कि मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखा, वो मेरे गुरु जी हैं, पहली मीटिंग में बताया था। तो रामानंद जी सुप्रसिद्ध थे, रामानंद जी के आश्रम में पहुंचे, वहां उनसे प्रश्न किया कि ऐसे ऐसे गीता में लिखा है, क्या आप जानते हो? रामानंद जी महात्मा थे, वो सच्ची बोला करते। कहने लगे भाई आजा बैठ जा सरदार जी, आजा बच्चा, मैं जानता नहीं था लेकिन अब जान गया हूं। मैं नहीं जानता था, मैं विद्वान पाक रहा था लेकिन मुझे कख का पता नहीं था। वैसे तो वो मेरे को उन्होंने वचन दे दिया, वो भगवान है, परमात्मा है, अब मालिक है, सतपुरुष है, और मेरे को उन्होंने अपनी स्थिति ऊपर दिखा दी सारी, लेकिन उनकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। वो मेरे शिष्य नहीं है, मेरे गुरु हैं, लेकिन मर्यादावत उन्होंने कहा कि मुझे आप अपना शिष्य ही मानोगे। वो मेरे शिष्य कहो, मेरे गुरु कहो। और भाई उस कबीर जी ने मुझे यो ज्ञान बताया है। तो नानक जी ने कहा कहां मिलेंगे वो, कि अभी आएंगे शाम को यहां पर। नानक जी ने सोचा इतनी देर कौन डटा भगवान पृथ्वी पर, और हमने उसके लिए खोज के लिए सिर दे रखा। कहने लगे महाराज मुझे एक रास्ता बता दो, कहां है वो? क्यों अपनी झोपड़ी में होंगे। एक सेवक भेज दिया कि जाओ झोपड़ी पर छोड़ आओ। अब जाकर देखा उस परमात्मा को, खड्डी में कपड़े बुने दानक का काम करें थे, उन ढाणी जानते पता था आव एक आत्मा प्यारी। जब देखा वहां पर सतलोक काला नजारा सारा दिखाई दिया, ओए होए, कहते झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटा हुआ था। अब जैसे कबीर जी का वहां देखा सतलोक में, ओ हो, फिर वहां बैठे दिखे, वाहे गुरु, और कहते वहां एकदम इतनी उमंग में भर का आवाज लगाने लगे, फाई सूरत में लोग की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासी आना बहुता बार, देखो ये धानक रूप रहा करतार, कि ये ठग है, हमें मूर्ख बना रहा है, बका रहा है, जैसे प्यार में कहा करे ठगे, और आख्या में पानी भर रखा। सारे जुलाए इकट्ठे हो गए वहां के, कहते हैं ये भगवान है, परमात्मा आए हैं, पूर्ण ब्रह्म है। अब कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बार का जोगी से दे, वो दुलाई वहां के उसको एक आम सिंपल मैन मानते थे। वो क्या कहते हैं, ये देखो पंजाबी है, पंजाब तो आके पागल बन गया, इसने भगवान बतावे नीरू के बेटे ने, किससे गना तसल्ली हुई। तो परमात्मा ने कहा प्यारी आत्मा अब इसने राज रख थोड़े दिन, गुप्त रखना, जिक्र ना करना, तेरा भी दिल तोड़ देंगे ये, अपनी भक्ति करो और प्रचार करो इस ज्ञान का, और ज्यादा डिक्लेयर ना करना अभी, इसको गुप्त रखना हमने कुछ दिन। तो कहने का भाव ये है कि जिनने महापुरुषों ने भगवान मिला, और जिनको हम मानते हैं वो परमात्मा से मिले, और उन्होंने बताया है कि धानक रूप रहा करदार, हक्का कबीर करीम तू बे अप्रवर्दिगार। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अप्रवर्दिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर है, और ये 24 पृष्ठ पे लिखा है, भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, और खरा सियाणा बोता भारी, धानक रूप रहा करतार। अपने आत्माओं हमने भगवान को पहचानने में घनी देर ना लग गई वे, हम अज्ञान में कितने आंट रखे इन्होंने, लेकिन परमात्मा का ये तत्व ज्ञान ऐसा है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान, तारा मंडल बैठे कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। ये नकली संत और ये छोटे मोटे ज्ञानड़ी कहते हैं जैसे चंद्रमा रात्रि के समय तारों में बहुत अच्छा तेजों में और प्रसिद्ध यानी बड़ा चमकता है, मुखिया पाक रहा होता है, सूर्य उदय होने के बाद कहते चांद भी ना दिखता, सितारे भी विद्यमान होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे ही कबीर परमेश्वर की महिमा से हम परिचित हो जाएंगे, फिर अन्य भगवान इन चांद और सितारों की तरह ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, इनका अस्तित्व नहीं दिखाई देगा प्यारे को। तो क्या बताते हैं, अंधे की बां गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाई ये जगह सब अंधरे। मोती मुक्ता, मुक्ता माने मुक्त होने के, ये मोती हीरे लाल असली भक्ति रूपी मोतियों का इनको ज्ञान नहीं, लाल का ज्ञान नहीं, सार नाम सतनाम का। और ये कंगाल बन गए कौड़ी को लाल जानकर, आन उपासना करके अन्य देवताओं की पूजा करके ये कंगाल हो गए। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जगह सब अंधरे, और दिक्कत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। सारे पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है, और ये विद्वान का हमें कख भी नहीं पता इसके बारे में। तो इनके अज्ञान रूपी मोतिया बिंद था, और वो मोतिया बिंद का ऑपरेशन ही दास का कर दिया भगवान ने, और दास को डॉक्टर बना दिया, सबका मोतिया बिंद हटा दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, और फिर हम भगवान को स्वयं देखेंगे और पहचानेंगे। आत्माओं परमात्मा पाना सब तो आसान, एक रोटी बनाने के लिए कितना प्रयत्न करती है एक बहन, कितना सामान सांग जोड़ना पड़ता है, है? कितना पलटा चमटा है, फिर लकड़ी तोवा चूल्हा, फिर गिलास कटोरी थाली परात और आटा नमक मिर्च, और फिर उनको लाने के लिए कहां प्रयत्न करना पड़ता है। और जब जाके आटा गूंदम गूंदा कर फिर रोटी बना के खानी पड़ती है, उसमें कितना समय, दोनों टाइम खावे कंपलसरी हम और बनावे। और परमात्मा का पाना सबसे आसान, कहते जीव बिना लाणी सा मंत्र दे रखा भगवान ने, और कितना कीमती है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब इतना धनी बनाने का, सतलोक जाने के लिए हमने घनी भक्ति चाहिएगी, और मौखिक जाप और अन्य जापों से लाभ नहीं होगा। ये जो मंत्र है सतनाम का 2 अक्षर का, इसके जाप करने से हम भक्ति धन से गर्क हो जाएंगे, हम फुल्ली चार्ज हो जाएंगे। जब हम यहां से चलेंगे, इतने हम वहां से चार्ज होकर आए थे, उतना ही चार्ज होकर वापस जाएंगे वहां पर, इस मंत्र से होंगे, इतने धनी होंगे। और जो ये प्रथम मंत्र है 3 मंत्र में, और ये यज्ञ हवन हम करते हैं, इनमें हम जब तक यहां रहेंगे यहां सुख मिलेगा हमारे को, और काल का जितना भी ऋण है वो इसको दे देंगे, तू पकड़े अपना, हमने जाने दे, हम नहीं लेंगे तेरा प्रतिफल। और ये 2 मंत्र जो शेष बचेंगे, उसमें से जो तत् मंत्र का आपको दिया जाता है जाप, उसको हम अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करने का टैक्स है उसका, वो दे देंगे, संभाल तू अपना। तो ये जो सत्य है, ये सार नाम है, इसकी भक्ति से हम सतलोक में पहुंच जाएंगे, सथाई सथान मिलेगा। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे, कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षकों के दर दर गुमिया मिला ना निर्गुण रासा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की, परमेश्वर कबीर साहिब जी ने दिव्य दृष्टि खोल रखी थी, उन्होंने आज से अरबों खरबों पहले की सारी घटनाएं जिटी चित्रित कर रखी है, और उनको वो घटनाएं चलचित्र की तरह दिखाई देती थी। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि ये नानक साहिब जी जो थे, ये सतयुग में राजा अम्बरीश थे, यही आत्मा, और इतने पुण्यात्मा थे, इतने धर्मात्मा थे, और इतनी सत भक्ति करते थे विष्णु जी को इष्ट मानकर, दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष ने भी इनके दरबार में फिट्टे मुंह होना पड़ा था। उसके बाद वही आत्मा फिर त्रेता युग में राजा जनक रूप में जन्म हुआ, राजा थे वो, और नौकर सैकड़ों लाखों की संख्या में सैनिक उसके नौकर थे, और वही आत्मा फिर पुनों को स्वर्ग में नाश करके, बहुत यज्ञ किया करते थे राजा जनक, उनको नष्ट करके कलियुग के अंदर कालू राम मेहता के घर पे एक सिंपल मैन के घर जन्म हुआ, क्योंकि वो सब पुण्य खत्म हुए, और फिर नौकरी कर रहे एक नवाब के घर पे आप ही, और पहले उनके लाखों नौकर होते थे। तो काल का ये जाल ऐसा है, जब नानक साहिब जी को अपने पिछले जन्म दिखाए परमात्मा ने कि आप राजा थे, राजा जनक भी आप थे, और अब आप क्या हो, पेटा भर गया उस पुण्यात्मा का भगवान देखकर। इनको कहते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको भगवान मिलते हैं, उस दिन के बाद फैसला कर लिया पूरा हिंदू समाज, नानक साहब जी के पिता भी विरोधी हो गए थे, क्योंकि पैदा हो गया हमारे देवताओं ने बुरा बतावे, और सब ब्राह्मण विरोधी हो गए थे कि ये पागल हो गया, इसका पता नहीं क्या हो गया, ये सब उल्ट सुलट बोल रहा है। तो इस प्रकार पुण्यात्मा अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तरह ब्रह्मत हो गए, और यदि परमात्मा ना मिलते हुआ प्यारी आत्मा अगले जन्म में 84 लाख योनियों में जाती। कोट जन्म तरह ब्रह्मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौवा हंस बगारे, कोट जन्म तू राजा की ना, और मिट्टी नमन की आसा, भिक्षकों के दर दर घूमया, मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे साधक भी रह चुके हो, घर त्याग गए, नगर से एक सुक्की रोटियां मांग लेंगे, दो रोटी खाई, चार खाई, बाकी कपड़े में बांध कर वृक्ष के बांध दी, सूखगी, एक दिन भूखा रहे, अगले दिन उन्हीं को भिगो कर खा लिया, यानी 3 दिन का काम चला लिया, 1 दिन की भिक्षा तय, और खूब घोर तपस्याएं की, साधनाएं की, अन्य नामों की, अन्य साधनाएं की, उनसे क्या हुआ, तप से राज राजमदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली ऐसी साधनाएं करके तूने, और इंद्र का कितना समय होता है, बेहतर चतुर्युग तक वो शासन करता ऊपर, बेहतर चतुर्युग तक, और उसके बाद उसके दौरान इंद्र को एक हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, एक कंडीशन होती है कि तेरे शासन काल में, और यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तपस्या धर्म और यज्ञ कर लेगा तो तुझे बीच में ही तेरा शासन छीन लिया जाएगा और उसको इस पद पर विराजमान किया जाएगा। इंद्र को यह चिंता रहती है और उसके लिए फिर वो सतर्क रहता है, उसने अपने एजेंट छोड़ रखे होते हैं कि कोई मेरे शासन काल में और मेरी गद्दी प्राप्त करने योग्य कोई ऐसा धर्मपूर्ण तप ना कर ले, यज्ञ ना कर ले। एक मार्कंडेय ऋषि थे बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे, इंद्र को पता लग गया, उसने एक अप्सरा भेजी उर्वशी अपने इंद्र के लोग थे, स्वर्ग लोग थे, और बहुत सुंदर खूबसूरत सारे उसको सिद्धि दे दी। उस मार्कंडेय ऋषि के आसपास 8-7 किलोमीटर मां गए, एक बसंत जैसा माहौल तैयार कर दिया, ना गर्मी ना सर्दी, महक छोड़ दी अपनी सिद्धि ते, और अपने आप सारंगी ये सब साजबाज अपने आप बजने लग गए, और वो मार्कंडेय ऋषि के सामने खड़ी होकर नाचने लगी, डांस करने लगी, करती रही डांस, और मार्कंडेय ऋषि में कोई गतिविधि नहीं हुई जैसा वो चाहती थी। आखिर में वो नी वस्त्र होगी, कमर का नाड़ा तोड़ दिया, जब कति नंगी होगी, संत ने ऋषि ने कहा, हे बेटी, हे माई, ये क्या कर रही है तू, यहां किस लिए आई तू, तो शर्मिंदा होकर के वस्त्र पहनकर कहने लगी, हे मार्कंडेय ऋषि, मेरे को देखकर इस बनखंड में जितने भी तपस्वी थे सब डामाडोल हो गए, इनका तो दीर्घ धर्म नष्ट हो लिया, और तुम पता नहीं कहां तुम्हारी समाधि थी, तुम जानो। और उसने कहा मार्कंडेय ने कि मेरी जहां समाधि थी वहां तेरे जैसी तो नाचने वालियों की 7-7 बांधी थी, 9 करानी थी, वो कितनी खूबसूरत होंगी, जहां मैं देख रहा था डांस, तेरे तो कोई सुथरी हो ना, उसने भेज को तेरे से सुंदर हो। तब उसने कहा कि मैं इंद्र लोक में सबसे सुंदर मैं ही हूं, मैं इंद्र की पटरानी हूं, और आप एक बार इंद्र लोक में चलो, नहीं तो मेरी मजाक करेंगे, मुझे दुहागन कर देगा इंद्र, नो कहेगा तू आर के आएगी, मुझे सजा मिलेगी। अपनात्माओं, जैसे हम हठ योग का जो ध्यान करते हैं ना, ये कति अज्ञानता है, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ये तो बात तो कुछ कोई ना, ये तो बकवाद से निरी, हजारों वर्ष सैकड़ों वर्ष सारा सारा दिन साधना करते थे, मेडिटेशन लगाते थे, मेडिटेशन के वैसे होता है जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, 3 घंटे जाते थे, अब तो नहीं जाओगे, ना जाते हो, 3 घंटे इसे लागे 3 मिनट में गए, क्योंकि वो बकवाद दिखती थी सारी अनोखी सी। ऐसे ये समाधिस जो होते हैं अंदर शरीर के अंदर चैनल लगे हमारे शरीर में, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, और पिछले संस्कार से इंसान कोई साधना का प्रयत्न करता है तो उसका कोई जब समाधिस्थ होने का हठयोग करता है तो कोई चैनल ऑन हो जाता है, यानी हम अंदर कमल है वो कोई सा कमल खुल जाता है, उसके पिछले संस्कार से, और फिर उसमें प्रवेश कर जाता है। वहां सब ये डांस नाचने गाने ये सब हो रहे हैं ऊपर के लोकों में, वहां तो अपनी कमाई खराब करने जाती है सब पुण्यात्माएं। तो ये मन आप कहीं बैठ कर देखना, 10 मिनट भी भक्ति ना करने दे, जब मैं सोचा चल वहां चलते हैं नौकरते हैं, कहीं बस की इंतजार करती है ना, और बस स्टैंड पर बैठ जा, 10 बैठा होगा देखिए किसी आली, और फिर बैठ जा, फिर थोड़ी देर में उठकर देखेगा कोई दिखेगी तय, और ये बैठे रहते हजारों वर्ष, ये न्यू बैठा करते कि यहां से इस मन को ऊपर और अच्छी बकवास दिखाई दे थी। मार्कंडेय ऋषि कहता था मेरी समाधि ब्रह्मलोक में पहुंच रही थी सहस्रार कमल में, और इस टीवी देख रहा था शरीर के अंदर, वो यहां ये चोटी दो रहे, तो वहां होटल है, होटला में अजीब आत्मा वहां पहुंच गई मार्कंडेय ऋषि की, और तभी तो ये बैठे रहा इतनी समय तक ना कौन बैठे, और बैठने से इनका तप बन जाता, तब से अगले जन्म में राजा और कुछ दिन स्वर्ग में, और फिर 84 लाख योनियों में इनका ऐसी दुर्गति हो रही थी। उर्वशी कहने लगी कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं। तब मार्कंडेय ने कहा जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उस इंद्र की रानी ने, इंद्राणी ने कहा सची ने कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, ये भूत मारा किलकी में, ये पहला करके साधना गलत है, अरे अब ये सही कहे गया ब्रह्म माटी तो न्यू है जो महाराज जी बता रहे हैं, प्रिया दत्ता जब है जब सारा काम बिगड़ लिया है, लेकिन फिर बात क्या बने, फिर कोई यूज नहीं इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो कहने लगी देखो पुण्यात्माओं कितना गहरा ज्ञान दिया परमेश्वर ने, वो जो सची रूप में इंद्र की पटराणी रूप में जो आत्मा है उसने कभी जन्म जन्मांतर में कितने पुण्य करे, वो 14 इंद्र मर जाएंगे और वो अकेली उनकी पटराणी बनी रहेगी, उन्हें तो वहां सुख भोगण तो मतलब है अपना आनंद लेना है, वहां इज्जत बेजती कुछ नहीं है ऊपर के लोकों में, वो तो पटराणी बनी रहेगी। इंद्र मर गया बेहतर चौकड़ी युग पूर्ण होते इंद्र मर जाएगा, और वो क्या बताती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी, यानी वो तो अकेली रहेगी पत्नी उनकी, और 14 इंद्र एक ब्रह्मा के एक दिन में, 1008 चतुर्युग हैं और इंद्र का शासन काल 72 चतुर्युग का होता है, तो 14 इंद्र इसमें अपना शासन काल पूरा कर जाते हैं, 1008 चतुर्युग होता है युग से, लेकिन लंप संप इसको 1000 चतुर्युग मानते हैं। तो वो क्या कहती है कि उसने इतनी अच्छी तपस्या साधना भक्ति धन धर्म कर रखा था कि 1008 चतुर्युग तक वो अकेली आनंद भोगती है एज ए पटराणी, यानी स्वर्ग लोक में, और 14 इंद्र अपना शासन काल 72 चतुर्युगी पूरा करके मरते रहेंगे तो वो गधे बन जाते हैं, 87 गधे की योनि से होता है इंद्र का जो जीवन 84 लाख योनियों में। अब क्या बताया है कि तू इंद्र मरेगा जब क्या करेगी, ऋषि मार्कंडेय ने पूछा, इंद्राणी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। मार्कंडेय ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे जब के करेगी कि मैं तो गधी बनूंगी और जितने इंद्र में भोगूंगी वो गधे बनेंगे, फिर जिस लोक के राजा भी गधे बने और रानी भी गधी बने फिर मुझे वहां क्यों ले जावे थी। ने बोली अपनी इज्जत रखने खातिर ना तू अन्यों कहेंगे कि तू हार का आ गई। अब मार्कंडेय ऋषि हंसे फिर न बोले रहे तू आज भी गधी 14 खसम करेगी और मरे पाछे फिर खुद का गधी बनोगी, बता तू भी इज्जत की ठेकेदार नहीं हो रही, अब बिनो का बेइज्जती होगी, अरे थरा गजब भैयो। इतने में इंद्र आ गया, इंद्र आ गया कहा हे बंदनिवाज इंद्र की गद्दी प्राप्त करो तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि कहने लगे अरे रे इंद्र क्या बोल रहा है, इंद्र की गद्दी तो मेरे लिए काग की बीट है, और बेटा आजा मैं तुझे ब्रह्मलोक का रास्ता बता दूं, वहां बड़ा सुख है, ब्रह्मलोक में इतना आनंद है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब उसने ब्रह्मलोक के आनंद का बेरा था, इस तक इनको ज्ञान नहीं था, ऋषियों को ओम का नाम जो ब्रह्मलोक में वहां ठाठ बोकर फिर मार्कंडेय भी पशु बने, वो उसका याद नहीं थी। जिसने जो साधना वो अपने को सुपीरियर मानता है, लेकिन ब्रह्म साधना इनसे अच्छी है, इन अन्य डले डोणते, लेकिन वो भी मोक्षदायक नहीं है। लेकिन मार्कंडे को वो अपनी मोक्षदायक लगा थी, इंद्रवाड़ी से बढ़िया, तो इंद्र से कहा कि आ जा इंद्र, तुझे ऐसा मार्ग बता दूंगा, और छोड़ दे इसने। इंद्र कहता है कि महाराज जी फिर देखूंगा, इब तो मैंने मौज मारने दो, अगदा मर ले कुएं पड़के। अब गधा अपने पाछे के देखेगा, फिर तो कुमार देखेगा। अब जैसे आप जिस ज्ञान से परिचित होते हो, अपने मित्र से, भाई से, या किसी और रिश्तेदार से बताते हो, दास के साथ भी ऐसे बनता था, तो सारी बात सुन सुना के वो नो क्या करता, हम उनको बताते हुए पशु बनेंगे, गधे बन जावांगे, कुत्ते बन जाएंगे, फिर तो बिरान मट्टी होगी, नो बोला देखी जाएगी, बता गधे बने पासे के देखी जाएगी, तो कुमार देखेगा, फिर तो डायमंड का बोरा और गट्टा मारेगा लठे। अब देखना तो ई भय बुरा ई छोड़, भक्ति कर, परमात्मा का नाम ले, सारा इतिहास खोल कर धर दिया परमात्मा ने, इस दास के माध्यम से खुलवा दिया सारा ज्ञान। तो इसी तरह जैसे कोई गुटी लाव है सामने, वह टीटी बन जा गुटी ला गए, उन्होंने सोचा गुटी छोड़नी पड़ेगी, फिर देखांगे, फिर तो फिर कुमार देखा, फिर तो तुम नहीं देख सकते। तो ये किसी ना कोई ऐब किसी के अंदर काल ने फट कर रखा है, या कोई और बकवादा मड़ रहा है, तो वो ना छूटती, और वो छोड़ने पार पड़ेगी, वो तो कल मृत्यु हो गया तो छूटगी, जिसको तू अपनी मान रहा है। तो इन फार्मूलों से हम इस मार्ग पर दृढ़ होकर चल सकते हैं। अब इसको लंबा ना करके थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। फिर क्या बताते हैं, इंद्र को भी और ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण दर्भराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया। कहते असंग जन्म तरह मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, ये द्वादश मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। जीवित मरना किसे कहते हैं, एक तो ये है कि इच्छाओं का नाश करें, बड़ी कोठी बनाना, बड़ी कार लेना है, फिर उधर की बकवाद, ब्याह शादियों में डांस करना, गुटी लगाना, फिर दहेज देना और लेना, लोग दिखावा करना, कहते ये बकवाद छोड़नी पड़ेगी। संसार के चोचलों को देखकर हम नहीं चल सकते, उनसे मन हटाना पड़ेगा। और दूसरा जीवित मरना ये है, जैसे आप जी यहां आते हो, मन कोई ना कोई आंट अड़ावेगा आपके, यो नुकसान हो जाएगा, नो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो उस समय विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति ऐसे कंपलसरी काम के लिए नाइट सर्विस से गया था और वापस आना था, उसने रात्रि में मृत्यु होगी, एक्सीडेंट होगा उसकी, अब कितना कंपलसरी, कितना जरूरी कार्य था जिसके लिए वो रात ही वापस आना चाहता था, अब आप भी गया और वो काम भी रह गया, तो नो इस मन पापी ने समझा दे, जब यू बकवाद करने लग गए, सत्संग की तरफ चले और ये कुछ आंट अड़ावे, तो नो मन जीवित मर ले, कि नो सोच ले मैं मर गया और मेरी मृत्यु होगी और फिर कौन से मारेगा इसने, और चल पड़ा आंख मीच के सत्संग की तरफ। आप देखना इसका कहते बड़ा पुण्य मिलेगा आपको, और फिर तीन दिन के बाद, चार दिन के बाद आप वापस चले जाओगे, और आप वापस जाकर के जो थोड़ा बहुत काम उलट पुलट हो भी गया, वैसे तो होता नहीं भगवान के लिए, जो सच्चे दिल तो चलते ठीक उड़ा खड़ा पाओगा भगवान आपको, ये सत्कर्म मान लेना। लेकिन हम इतना विश्वास नहीं कर पाते शीघ्र सी, तो इन परमात्मा के विधान के अनुसार चल कर देखें, तो यूं सोच ले चार दिन में जो काम बिगड़ गया उसने फिर संभाल लेंगे जाके, और जब परमानेंट टिकट कटगी फिर, या कौन सा ये पक्का कि हम नहीं मरेंगे, जब मान ले परमानेंट मर गए, मृत्यु होगी, फिर क्या करोगे, वो काम फिर भी रह गया, राम भी रह गया। कहते हैं राम नाम कड़ुआ लग गए और मीठे लग गए दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। एक हमारे गुरुदेव जी के शिष्य थे, तलवंडी भाई कस्बा है फिरोजपुर जिले में, और गुरु जी के सतलोक जाने के उपरांत दास की वहां जाकर सत्संकरण लाग गया था, कुछ दिन किया वहां दूसरे रविवार को, तो उनका गुरु जी के जो शिष्य थे उनका कोई रिश्तेदार आया था, कोई बुढ़िया के शोक व्यक्त करने, शुक्र को आया था, शनिवार को उसने जाना चाहा। उन्होंने कहा कि हमारे यहां सत्संग सुनना, सत्संग होगा कल रविवार को 9 से 11 सत्संग है, सत्संग सुनना। बोला मैंने बहुत सुन रखे सत्संग। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा सत्संग नहीं सुना होगा, आप अवश्य सुनना। बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत जरूरी कार्य है, वहां एक कॉन्ट्रैक्ट होना है, मेरा एग्रीमेंट होना है और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा, तुम क्या जानो मेरे व्यवसाय के बारे में। और सन 1997 की बात है ये, 1997 में 5 लाख आज के 50 लाख है ना समझ लो। वो नहीं माना, वो चला गया शनिवार को शाम न चला वहां से चंडीगढ़ के लिए। अंबाला के पास आकर के एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके दोनों पिछले चारों पहिए निकाल रखे पिछले और जैक लगा रखा था डिफेक्ट हो जाने से। उसने तो वो एग्रीमेंट दिखाई दिया था, पूरा परिवार कार में 4 सदस्य थे, 2 बच्चे और 2 वो खुद, मारुति कार थी, फुल स्पीड पर चल रहा वो ट्रक के नीचे जा घुसी, वो जैक हटा, सारा ट्रक ऊपर पड़ गया, बजरी का भरा हुआ, कचू मर निकल गया, चारों मर गए। अब चाट लिया उन 5 लाख रुपया ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। तो इस तरह इस मन पापी को अपने मालिक के इन फार्मूलों से हटाकर और इसमें जोड़े रखे भगवान के पाड़े पे। फिर क्या बताते हैं, दोजिक बिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। कोई सरपंच बन जाता है नो नीत रहे चेयरमैन बनू, चेयरमैन बन जाए नो सोचा मैं एमएलए बनू, एमएलए बन जाए नो सोचा मंत्री का दाव लगे, मंत्री बनते नो सोचा मुख्यमंत्री बनो जो पेटा भरे, इतना मृत्यु हो जा भाई दर दर फिरे। अब जैसे अरुणाचल का एक मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री और पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, एक जहाज में क्रैश होकर मर गए, ये हेलीकॉप्टर में जा रहे थे जल्दी के मारे, ये दोनों मुख्यमंत्री जी ये यहां मर गए। अब इनको कितना कंपलसरी कितना जरूरी काम होगा, जो हेलीकॉप्टरों से यात्रा कर रहे थे, जाता हूं मीटिंग करूंगा फलाना करूंगा फलानी फाइल साइन करूंगा। अब परमात्मा बताते हैं कि इन बातों ने याद करो तुम कि दोजिक बिस सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। इसने 3 लोक भी दे देना तो भी संतुष्टि नहीं इसकी, न सोचो और कितने पावर जब बात बने। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चलन सा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, इस तत्व ज्ञान से आपके सभी इच्छाओं का नाश कर देगा, यहां की कोई भी वस्तु तुम्हें सुहावे नहीं गी। जो भक्ति बाधक हो, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद पद्धति भगवान के पाने की विधि, और पद यानी सही शास्त्र अनुकूल सत साधना मिलने से पद पद्धति मिलगी। पद मिल पदे समाना, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस संसार में नहीं आता। यहां बता रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी के सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पद समाना, सही साधना के मिलने से वो पद मिलेगा अमर पद, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। 18वें अध्याय के गीता जी के 62वें श्लोक में कहा अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आदि अमर, आदि माने शाश्वत सनातन कदे का। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान है, और वहां क्या सुख है, तुम यहां की जो सुख चौथी मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हो, चारों मुक्ति भी प्राप्त कर ले हो तो भी एक दिन समाप्त होंगी तुम्हारी, तुम उसको परमानेंटली नहीं रख सकते। और वहां पर कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती, ये सुख तुम्हारे चरणों में सदा पड़ा रहेगा। और माया हो रही दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, अब जहां से हम शुरू हुए थे कि जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे जन्म मरण का रोग लग्या है तृष्णा बढ़री खांसी, आवागमन किया डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोग यारे। फिर क्या बताते हैं, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत्कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत्कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। अब ये है वो पद, ये तीनों मंत्र का जो जाप आपको मिलेगा, और प्रथम ये सात मंत्र दिए जाते हैं, फिर सतनाम दो मंत्र का दिया जाता है। इसे क्या बताते हैं, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अब है पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो परम अक्षर ब्रह्म, जैसे अक्षर पुरुष की आयु कितनी है, 70,000 बार त्रिलोकी शिव मर जाएंगे जब एक योग होगा परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और फिर 1,000 उसे बने हुए युग का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की आयु, फिर भी मृत्यु। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिन तत्वदर्शी संतों के बारे में कहा है कि तुम इतनी लंबी उम्र पाकर भी अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हो, उसका कारण क्या है, क्योंकि सतगुरु मिले नव भेंटे संतरे। ऐसे संत भक्त नहीं मिले जो इन्हें बतावे कि आज के दिन बरवाड़ा के अंदर है जो कुछ है, और वो सतगुरु की शरण नहीं लेने से। कहते फिर एती उम्र बुलंद, इतनी लंबी आयु होगी तो भी मृत्यु होगी, ब्रह्म मट्टी जारी रहेगी। तो क्या बताते हैं, समझा है तो सिर दर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ, बोलो सतगुरुदेव।